صفحہ نمبر 313، اقبال نے یہ دو شعلہ انجمن کے منتظمین کو دے دیا۔ دو شعلہ مجمع عام میں نیلام ہوا اور سب سے بڑی بولی ختم ہونے پر جو رقم وصول ہوئی انجمن کی تحویل میں دے دی گئی۔ 1911 کے سال میں اقبال نے کئی معروف نظمیں کہیں، ترانہ ملی اسی دور کی پیداوار ہے۔ 16 اکتوبر 1911 کو انہوں نے بادشاہی مسجد لاہور میں مسلمانوں کے مجمع عام میں اپنی نظم حضور رسالت مآب میں پڑھی۔ یہ نظم ان نظموں میں سے ایک ہے جو جنگ طرابلس سے متاثر ہو کر لکھی گئی۔ جنگ طرابلس میں ترکوں کی فتح کے بارے میں اکبر الہ آبادی کے نام اپنے خط محرر 9 اکتوبر 1911 میں تحریر کرتے ہیں، ترکوں کی فتح کا مزدہ جان افزا پہنچا مگر اس کا کیا علاج کہ دل کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا، معلوم نہیں رہو کیا چاہتی اور آنکھوں کو کس نظارے کی حوث ہے۔ میں ایک زبردست تمنا کا احساس اپنے دل میں کرتا ہوں، گو اس تمنا کا موضوع مجھے اچھی طرح سے معلوم نہیں، ایسی حالت میں مجھے مسرت بھی ہو تو میں اس اضطراب کا عنصر غالب رہتا ہے۔ دسمبر 1911 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے فیصلہ کیا کہ اقبال کو کانفرنس کے اجلاس کی صدارت کے لیے دلی مدعو کیا جائے اور ان خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مولانا شبلی ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنے کی رسم ادا کریں۔ اقبال نے دعوت قبول کر لی اور کانفرنس کے اجلاس میں شرکت کے لیے دلی گئے۔ اجلاس میں مولانا شبلی، مولانا شاہ سلیمان پھلواری، سید سجاد حیدر یلدرم اور خواجہ کمال الدین کے علاوہ سر آغا جان، سید حسین بلگرامی، ایان و ارکان حکومت، رہبران و فرمان، روایان ریاست ہائے ہند اور برصغیر کی دیگر مسلم برگزیدہ ہستیاں موجود تھیں۔ اقبال نے کانفرنس کے اجلاس کی تیسری نشست کی صدارت کی مگر جس نشست میں ان کے گلے میں ہار پہنانے کی رسم ادا کی جانے والی تھی اس کی صدارت مولانا شاہ سلیمان پھلواری نے کی۔ اس اجلاس نے خواجہ کمال الدین نے اسلام اور علوم جدیدہ کے موضوع پر لیکچر دیا اور اپنی تقریر کے اختتام پر اقبال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کہاں ہے تو ڈاکٹر اقبال، خدائے تعالیٰ تجھے دین و دنیا میں با اقبال کرے، تیرے نادر قوائے ذہنی ابھی دنیا کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں، تجھ میں وہ ذہنی قابلیتیں اور استعدادیں ہیں کہ ان کا ٹھیک استعمال بقائے دوام کا تاج تیرے سر پر رکھ سکتا ہے، لیکن یہ خاص الخاص قوا تجھے اس لیے عطا نہیں ہوئے کہ تو فی کل ورد یا یہ مون کم صادق بن کر ایک بے ثمر باغ میں جس کا نام مشاعرہ ہے گل گشت کرے، اب وقت ہے اٹھ اور حقیقی تلمیز الرحمن بن عامل سفلی کو چھوڑ اور طائر قدس ہو جا، تجھے اگر مغربی حکمت و فلسفہ انہوں نے سکھا کر ڈاکٹر کا خطاب دیا تو یہ قرضہ ترانوں اور نغموں سے ادا نہیں ہو سکتا، اس کا معاوضہ یہ ہے کہ تو قرآن کو کھولے اور اس کے دریائے حقیقت میں غوطہ لگائے اور اس سے حکمت و فلسفہ حقہ کے در شہوار نکال دے۔ کیا یہ بات درست ہے جو چند دن ہوئے اٹلی اور ترکی کی جنگ کے متعلق لیکچر دیتے ہوئے اس 20ویں صدی کے ایک شکی ازلی شریڈن نے کہی اور ہمارے دل کو کباب کیا کہ اسلام ہمیشہ ہی بے ثمر رہا اور اس سے نسل انسانی کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اور یہ کہ اسلام کا نام و نشان مٹنا ہی اچھا ہے، یہ جرمنوں کے سامنے ان کو دھوکہ دینے کے لیے اور ان کی نگاہ میں اٹلی کی قزاقی کا جواز پہ ثابت کرنے کے لیے اس 20ویں صدی کا بڑے سے بڑا قذاب بولا گیا۔ کیا یہ بہتر ہے، بہتر سے بہتر وقت جرمن کا قرضہ اتارنے کا نہیں، دیکھ یورپ کیا اور اس کا فلسفہ کیا ہے، یہ سب کا سب مال مسروقہ ہے، اور بیرسٹر اقبال آپ میرے ساتھ وکالت میں شامل ہو اور ہم بحیثیت منصبی اس مال کو اپنے گھر کا مال مسروقہ ثابت کریں، تجھے خدا نے بے نظیر قابلیتیں اس لیے نہیں دی کہ تو لفظی مشغافی میں پڑے اور اپنے شہروں سے ہمیں خوش کرے، تیرے گانے کا یہ وقت نہیں، یہ عملی کام کا وقت ہے، وہ ہار جو قوم تیرے گرے میں عملاً ڈال رہی ہے اور تو اس کا حقیقی طور پر مستحق ہے، وہ ان گلائے فردوس بری کے مقابل کیا حقیقت رکھتے ہیں جو خدمت قرآن تیرے لیے وقف کر سکتی ہے، قوم تجھے ملک الشہرہ بنانا چاہتی ہے اور وہ ایسا کرنے میں غلطی پر ہے اور تم پست ہمت ہوگا اگر اس پر قائنہ ہوا، میں تجھ میں راضی اور غزالی کا بروز دیکھنا چاہتا ہوں۔ خواجہ کمال الدین کے جواب میں اقبال نے اپنی تقریر میں کہا، خواجہ صاحب نے جو تقریر اس وقت کی ہے وہ نہایت دلچسپ اور معنی خیز ہے، اس زمانے میں مسلمانوں نے اس مبحث پر بہت کچھ لکھا کہ اسلام اور علوم جدیدہ کے مبین کیا تعلق ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام مغربی تہذیب کے تمام دام عمدہ اصولوں کا سر چشمہ ہے۔ 15ویں صدی عیسوی میں جب سے کہ یورپ کی ترقی کا آغاز ہوا ہے، یورپ میں علم کا چرچا مسلمانوں ہی کی یونیورسٹیوں سے ہوا ہے، یونیورسٹیوں میں مسلم ممالک یورپ کے طلبہ آ کر تعلیم حاصل کرتے और फिर अपने अपने हलकों में उलूम फ़नून की इशाअत करते थे। किसी यूरोपियन का ये कहना कि इस्लाम और उलूम यकजा नहीं हो सकते सरासर नावाकफियत पर मबनी है, और मुझे तअज्जुब है कि उलूम इस्लाम और तरीक़े इस्लाम के मौजूद होने के बावजूद कोई शख्स क्यों कर ये कह सकता है कि उलूम और इस्लाम एक ही जगह जमा नहीं हो सकते। बीकन डी कार्ट और मल यूरोप के सबसे बड़े फ़िलासफ़र माने जाते हैं, जिनके फ़लसफे की बुनियाद तजर्बे और मुशाहदे पर है, लेकिन हकीकत हालत यह है कि डिकार्ट का मेथड असूल इमाम गज़ाली की अहयाल हलूम में मौजूद है, और इन दोनों में इस कदर तकाबत है कि एक अंग्रेज़ मौरख ने लिखा है कि अगर डिकार्ट अरबी जानता होता तो हम ज़रूर इतराफ़ करते कि डिकार्ट सरका का मरतकब हुआ है। रॉजर बीकन खुद एक इस्लामी यूनिवर्सिटी का तरीम याफ्ता का जॉन स्टोवर्ट मिल ने मंतक की शक्ल अव्वल पर जो इतराज़ किया है, बाइना वही इतराज़ इमाम फ़ख्रुद्दीन राजी ने भी किया है, और मिल के फ़लसफे के तमाम बुनियादी असूल शेख बू अल सीना की मशहूर किताब शफा में मौजूद है। गर्ज़ के तमाम वो असूल जिन पर उलूम जदीद की बुनियाद है, मुसलमानों के फैज़ का नतीजा है, बल्कि मेरा दावा है कि ना सिर्फ उलूम जदीदा के लिहाज से बल्कि इंसान की ज़िंदगी का कोई पहलू और अच्छा पहलू ऐसा नहीं कि जिस पर इस्लाम ने बे इंतहा रूह परवर असर ना डाला हो। इसके बाद सजाद हैदर जलदरम ने मौलाना शिबली से दरख्वास्त की कि वो इकबाल को फूलों के हार बनाए। मौलाना शिबली ने अपनी मुख्तसर सी तकरीर में फरमाया, ये रस्म कोई मामूली रस्म नहीं है और इसको महज तफरी ना तसव्वुर करना चाहिए, बल्कि हम मुसलमानों का ये शौर रहा है कि हम जिस कदर कौम को की दी हुई इज्जत और खिताबात की कदर करते रहें, इतनी किसी और इज्जत की शोहरत हमारे नामों के साथ नहीं हुई जो इज्जत कौम की तरफ से आज डॉक्टर इकबाल को दी जाती है। वो इनके लिए बड़ी इज्जत और फख्र की बात है, और हकीकत में वो इस इज्जत के मुस्तहिक हैं। इसके बाद उन्होंने इकबाल के गले में फूलों का हार डाला। इकबाल ने इस इज्जत अफजाई के लिए कौम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरी नज़मों के मतलब बाज़ ना खुदा तर्स लोगों ने गलत बातें मशहूर कर रखी हैं, और मुझको पान इस्लाम इज़म की तारीख फैलाने वाला बताया जाता है। मुझको पान इस्लामिस्ट होने का इकरार है, और मेरा ये इतकाद है कि हमारी कौम एक शानदार मुस्तकबिल रखती है, और जो मिशन इस्लाम का और हमारी कौम का है वो ज़रूर पूरा होकर रहेगा। शिर्क और बातल परस्ती दुनिया से ज़रूर मिट कर रहेगी, और इस्लामी रूह आखिरकार गालब आएगी। इसी मिशन के मतलब जो जोश और ख्याल मेरे दिल में है, अपनी नज़मों के ज़रिए कौम को पहचाना चाहता हूँ, और इस सिपरट के पैदा होने का ख्वाहिशमंद हूँ जो हमारे असलाफ में थी, के बावजूद दौलत व अमारत के वो इस दार फानी की कोई हकीकत ना समझते थे। मैं सफ़ा नंबर 317, जब कभी दिल्ली आया होता हूँ तो मेरा ये दस्तूर रहा है कि हमेशा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के मज़ार पर जाया करता हूँ, और वहाँ के दीगर मज़ारात वगैरह पर भी हमेशा हाजिर हुआ करता हूँ। मैंने अभी एक शाही कब्रिस्तान में एक कब्र पर अलमुल्कुल्लाह का कतबा लिखा हुआ देखा। इससे इस इस्लामी जोश का इजहार होता है जो दौलत और हुकूमत के ज़माने में मुसलमानों में था। जिस कौम और जिस मज़हब का ये असूल हो कि इसके मुस्तकबिल से नाउम्मीदी नहीं हो सकती, और यही वो पान इस्लामिज़म है जिसका शाया करना हमारा फ़र्ज़ है, और इसी किस्म के ख्यालात को मैं अपनी नज़मों में ज़ाहिर करता हूँ। जलसे के इख्तिताम पर साहिब सदर मौलाना शाह सुलेमान फुलवारी ने अपने खुतबा सदारत में इकबाल को खराज तीन तहसीन पेश करते हुए कहा, एक और काबिल जिक्र अमर मेरे अजीज़ दोस्त फ़ख्र कौम प्रोफेसर इकबाल को इनकी कौमी शायरी की संद में फूलों के हार पहनाए जाने का भी है। इसके मतलब मैं कुरान से क्या फ़ैसला दूँ, वहाँ तो फरमाया गया है वशरा यतबा अगौन, मगर नहीं नहीं ये तो अय्याम जहलियत के इन शोरा की नस्बत से कहा गया है जिनकी शायरी का माया नाज हजलियात हजू व मजम्मत गैर महजब और मुखरब इखलाक बातें थी, लेकिन इकबाल डॉक्टर इन शायरों में से हैं जिनको इसी आयत के आगे अल्लज़ी अमनुआ से मुस्तस्ना कर दिया गया। ये इन लोगों में से हैं जिनकी शान ये बताई गई है कि फ़ब्सु नुसर आबादी जी यसमाउन कुलफत यतबाउन अहसना। मिस्टर इकबाल तो एहसन कौल वाले ममदू शायर हैं, इनकी कौमी शायरी अब इस आम मकबूलियत को पहुँच गई है कि कौमी जलसों में मलूद और वाज की महफिलों में इनके कौमी तराने और इनकी नातियाँ नज़में पढ़ी जाती हैं। इकबाल की शायरी का रंग ढंग अगले शोहरा से निराला है, अगले शहरों की सखावत व दरिया दिली इस दर्जे बड़ी हुई है कि महबूब के खाल पर समरकंद बुखारा अनसार करते हैं। बखाल हिंदुश बख्शमन समरकंद बुखारा, अगरचा अब ये मुल्क सफ़ा नंबर 318 चूँकि मुसलमानों के कब्ज़ा से निकलकर रूस के मुल्दारी में है, इसलिए यूं कहना जेबा है बहाल रूसिया बख्शम समरकंद बुखारा। मगर प्रोफेसर इकबाल की आली ख्याली सुनिए, कि एक तरफ तो त्राबलस कब्जा से निकला जाता है, एक तरफ ईरान मर्ज खतर में है, मगर इनका तराना यह है कि ज़मीन हमारी, आसमान हमारा, चीन हमारा, हिंदुस्तान हमारा, यहाँ तक कि मुस्लिम हैं हम वतन हैं, सारा जहाँ हमारा। खैर हम भी कहते हैं कि खुदा करे सारा जहाँ तुम्हारा हो जाए और कोई ना हो तो हम तुम्हारे हैं। इकबाल साहब के लिए ये मौका बहुत ही मुबारक है और हमें भी बड़ी मसरत है कि इस जलसे में इन्होंने अल्लामा शिबली के मुकतदर हाथों से फूलों के हार पहने, नाम भी मुबारक, काम भी मुबारक, फूलों का हार भी मुबारक और हार डालने वाले का दस्ते करम भी मुबारक। हिंदुओं के दबाव के तहत तकसीम बंगाल की तनसीख मुसलमानों के लिए भी बिलाशुबा एक अहम सबक था। कैसर हिंद जार्ज पंजम की रुखसती के बाद इस सिलसिले में 1 फरवरी 1912 को बाग बैरून मोची दरवाज़ा मुसलमानों का एक जलसा आम हुआ, जिसमें इकबाल ने तकरीर करते हुए कहा, मुसलमानों को अपनी तरक्की के लिए खुद हाथ पांव मारने चाहिए, हिंदुओं को अब तक जो कुछ मिला है महज अपनी कोशिशों से मिला है। इस्लाम की तारीख को देखो वो क्या कहती है, अरब के खित्ते को यूरोपियन ममारों ने रद्दी और बेकार पत्थर का खिताब देकर ये कह दिया था कि इस पत्थर पर कोई बुनियाद खड़ी नहीं हो सकती। एशिया और यूरोप की कौमें अरब से नफरत करती थी, मगर अरबों ने जब होश संभाला और अपने कस बल से काम लिया तो यही पत्थर दुनिया के ऐवान तमद्दन की मेहराब की कलील बन गया। और खुदा की कसम रूमा जैसी बदजबरूत सल्तनत अरबों के सैलाब के आगे ना ठहर सकी। ये इस कौम की हालत है जो अपने बल पर खड़ी हुई। 16 अप्रैल 1912 को अंजुमन हमायत इस्लाम के सालाना इजलास में इकबाल ने अपनी मशहूर नज़म शमा व शायर पढ़कर सुनाई। नज़म चूंकि तवील थी इसलिए दो नशिस्तों में सुनाई गई। सामीन की तादाद 10,000 के लगभग थी। नज़म पढ़ने से पहले उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, जो नज़म पिछले साल लिखी थी वो शिकवा था और इसमें खुदा की शिकायत थी और बाद लोगों ने इसे बुरा ख्याल किया था और ये समझा था कि ये बहुत बड़ी जसारत है। मैंने भी यही ख्याल किया, लेकिन फिर भी वो इस कदर मकबूल आम हुई कि आज तक कई हज़ार खतूत इसकी तारीफ़ें मेरे पास आ चुके हैं। इससे जाहिर होता है कि वही बात जो लोगों के दिलों में थी वो जाहिर कर दी गई है, लेकिन मैं ख्याल करता हूँ कि मेरा शिकवा खुदा को भी पसंद आया। खैर अगर वो ना भी बख्शे तो मैं तो यही कहूँगा, ये भी रहमत है तेरी, तूने दिया दोजख मुझको, मेरे मकाफात की तो ये भी जगह ना थी, इसलिए मैंने खुद एक सज़ा तजवीज़ की है कि अपनी शिकायत करूँ ताकि मुआवजा हो जाए। मैं अपनी नज़म की तरफ ख़ास तवज्जो अंग्रेज़ी तलीम याफ्ता नौजवानों को दिलाता हूँ। मेरा शेर लिखना ख़ास ख़ास असास का नमूना है। मेरी आज की नज़म ऐसी जामे है जिसमें मुश्किलात की तस्वीर और इनके हल करने का नुस्खा दर्ज होगा, इसलिए आपको इनको दोनों हदीसों से देखें, एक शायराना पहलू से और दूसरा तजावीज़ नुस्खा के लिहाज से। और इसलिए अर्ज़ है कि तलीम याफ्ता ख़ास कर तवज्जो फरमाई, ये ज़माना अहल इस्लाम की तारीख में सख्त पोलिटिकल टाइम है। खुदा के वास्ते तुम तवज्जो करो और इस्लाम की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए मेरी पूरी सरगर्मी से काम लो। मेरी नज़म का अनवान शमा व शायर का मुनाजरा है। इकबाल ने नज़म का आगाज़ किया तो सदाएं बुलंद होने लगी, तरन्नम तरन्नम, लेकिन इकबाल ने कहा कि वो खुद ही बेहतर समझते हैं कि नज़म गा कर पढ़ना चाहिए या तख्त अल्फाज। ये नज़म ऐसी है कि गा कर नहीं पढ़ी जा सकती। इसके बाद नज़म शुरू हो गई। इस साल बरसगीर के लिए लाजमी तलीम का बिल एम्पीरियल कानून साज कौंसल में पेश हुआ। इसकी हमायत में एक जलसा लाहौर में भी हुआ जिसकी सदारत इकबाल ने की। इन्होंने अपनी सदारती तकरीर में कहा, लफ्ज़ जबर से किसी को खटकना नहीं चाहिए, किसी तरह चिचक का टीका लाजमी और जबरी करार दिया गया है और ये लजूम व जबर इस शख्स के हक में किसी तरह मुजर नहीं हो सकता जिसके टीका लगाया जाता है। इस तरह जबर तलीम भी काबिल इतराज मुतसव्वर नहीं हो सकती। जबरिया तलीम भी गोया रूहानी चिचक का टीका है। इस्लाम में जबर की तलीम मौजूद है। मुसलमानों को हुक्म है कि अपने बच्चों को ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाएं। शिकवे पर बाज़ उलमा ने इतराज़ किया कि नज़म का लुबे लहजा गुस्ताखाना है। इकबाल ने इसकी तलाफी जवाब शिकवा में की जो 1913 में मोची दरवाजे के बाहर बाग में एक अजीम और शान जलसे में आवाम के जमे गफीर के सामने जंग बलकान के तुर्क मुजाहिदीन के लिए चंदा जमा करने की खातर पड़ी गई। इस नज़म का एक एक शेर नीलाम हुआ, एक भारी रकम बलकान फंड के लिए जमा हो गई। तकसीम बंगाल की तनसीख और तुर्की से मुतलक अंग्रेज़ी हुकूमत के रवैये से मुसलमान पहले ही बहुत रंजीदा थे। इस पर 1913 में साना कानपुर ने सूरत हाल मजीद ख़राब कर दी। कानपुर की सिविल इंतजामिया ने किसी सड़क को सीधी करने की गरज से मुकामी मुसलमानों के एहतजाज के बावजूद एक मस्जिद का कोई हिस्सा शहीद कर दिया। इससे मुसलमानों के जज्बात सख्त मजरूह हुए और एक जुलूस की शक्ल में मस्जिद तक पहुँच कर उन्होंने मन हुदम दीवारों को इस साल नौ तमीर करना शुरू कर दिया। इसी असना में अंग्रेज़ी डिप्टी कमिश्नर पुलिस की नफरी के साथ मौके पर पहुंचा और बगैर किसी तनबिया के गोली चलाने का हुक्म दे दिया, जिसके नतीजे में चंद बच्चों समेत कुछ मुसलमान शहीद हो गए। सफा नंबर 321 और कई गिरफ्तार हुए इस सहाने के बाद सारे मुस्लिम हिंदू में सदाए एहतजाज बुलंद होने लगी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शिबली की तहरीक से शुदा के पसमानदगान के लिए चंदा इकट्ठा किया गया और जब गिरफ्तार शुदगान के लिए कानूनी इमदाद की अपील हुई तो इकबाल भी मिर्जा जलालुद्दीन के साथ 7 सितंबर 1913 को कानपुर पहुंचे। मस्जिद के हिस्से की शहादत के सिलसिले में ख्वाजा हसन निजामी की मैयत में कानपुर के कलेक्टर से मिले। सितंबर को अलाहाबाद गए और अकबर अलाहाबादी से मुलाकात की। फिर दिल्ली पहुंचकर हकीम अजमल खान से मिलते हुए लाहौर वापस आ गए। तकसीम बंगाल के खिलाफ हिंदुओं की दहशत अंगेजी से खाइफ होकर मुस्लिम कायदीन ने मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़ की खातर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की और 1909 में मार्ले मिंटो इसलाहत के तहत जुदागाना इंतखाबात का असूल भी जज्वी तौर पर नाफज कराने में कामयाब हो गए थे। लेकिन बदली हुई सूरत हाल में मुस्लिम कायदीन के अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ मुसलसल वफादाराना रवैये के सबब मुस्लिम लीग की क्यादत पर से पढ़े लिखे मुसलमानों का एतबार उठता जा रहा था और इनमें ये अंदाज़ फिक्र पैदा हो रहा था कि अंग्रेज़ पर इन्हसार करना बेकार है, बल्कि इससे अपने मुतालबात मनवाने का वाहिद तरीका यही है कि हिंदुओं से मुफाहमत की जाए। इस रुझान के रोकने के लिए वकार और मुल्क ने सर सैयद अहमद खान के सही जानशीन की हैसियत से चंद मजामीन में तहरीर किए, मगर इनका जवाब 1912 में मौलाना शिबली ने मुसलमानों को पॉलिटिकल करवट के जेरे अनवान सियासी मजामीन के सिलसिले में दिया और मुस्लिम लीग पर कड़ी नुकता चीनी की। मौलाना शिबली ने तहरीर किया कि अब वक्त आ गया कि मुसलमान अपनी आंखें खोलें, जो सियासत इनके कानों में रोज़े वलादत से कलमा तौहीद की तरह डाली जाती रही है यही है कि अभी वक्त नहीं आया, पहले इन्हीं अपने आप में सियासत समझने की अहलियत पैदा करनी चाहिए। सबसे अहम ज़रूरत तलीम की तहसील है, वो अकलियत में है। सफ़ा नंबर 322 इसलिए इंतखाब का तरीका इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं। ये फिक्रे बार बार दोहराए गए हैं और हर एक के ज़ेहन नशीन हो गए हैं। हर मुसलमान बच्चा इन्हीं ख्यालात का पैदा होता है और सारी उम्र इन्हीं ख्यालात का पाबंद रहता है। और हैरानी की बात यह है कि जब कभी भी मुस्लिम नौजवान सियासत पर आपस में बहस करते हैं तो यही फिक्रात ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह दोहराते हैं। आइडियल ही एक ऐसी शय है जो दुनिया में इंसानों को अमल पर अपसाती है। मुसलमानों का आइडियल क्या है, इनका निसरबुल ऐन क्या है, यूनिवर्सिटियों से डिग्री हासिल करके अंग्रेज़ी हुकूमत की मुलाजमत अख्तियार करना, क्या ये आइडियल इनमें बुलंद और अरफाए जज्बात पैदा कर सकता है, क्या ये निसरबुल ऐन इनके दिलों में आला मकासद की तहसील के लिए तमन्ना पैदा कर सकता है। मुसलमानों के पस्त नज़रियात ने इन्हें बेहद नुकसान पहुंचाया है, इनमें सियासी शऊर की नशोनुमा रोक दी गई है। इसी सबब इनकी सियासी लुगत में आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने के मानी बगावत हैं। बहरहाल गफलत का दौर गुजर चुका है, अब मुसलमानों में सियासी शऊर पैदा हो गया है और ये फैसला करना बाकी है कि इस नई ज़िंदगी में इन्हें क्या लाहे अमल अख्तियार करना चाहिए। अगर सर सैयद अहमद खान ने इन्हें कांग्रेस में शामिल होने से मना किया तो क्या मुसलत वक़्त के तहत ये मशवरा दुरुस्त था, लेकिन क्या मुसलमानों को अपने कदमों पर खड़ा ना होना चाहिए, अगर अपना रास्ता खुद तलाश ना करना चाहिए। मुसलमानों और हिंदुओं के बाद अगराज मुश्तरक हैं और बाद गैर मुश्तरक, इसलिए ज़रूरी है कि इनका अपना सियासी प्लेटफार्म हो। मौलाना शिबली ने लिखा, इस मौके पर आकर दफ़तन हमारे सामने एक चीज़ नमूदार होती है, मुस्लिम लीग। ये अजीबुल खलकत क्या चीज़ है, क्या ये पॉलिटिक्स है, खुदा खास्ता नहीं, एंटी कांग्रेस है नहीं, क्या हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाँ स्वांग तो इसी किस्म का है। पॉलिटिक्स की बहस में हमारा सबसे बड़ा और मुकदम काम यह है कि यह समझा दिया जाए कि मुस्लिम लीग ना आज बल्कि हज़ारों वर्ष के बाद भी पॉलिटिक्स नहीं बन सकती। जिस ग्रोह के नज़दीक सिर्फ ज़बान से कोई लफ्ज़ बोल देना पॉलिटिक्स है, वो क्यों कर पॉलिटिक्स की हकीकत समझ सकता है। पॉलिटिक्स एक सख्त कौमी एहसास है, इसका ज़हूर बेगार के तरीके पर नहीं होता। ये एहसास जब दिल में पैदा होता है तो दिल व दिमाग और अज़ा सब मसरूफ़ कार हो जाते हैं। लीग का तर्ज अमल बताता है कि इसकी आवाज़ एक मसनूई और ख़ारजी आवाज़ है। उन्होंने मुस्लिम लीग के निज़ाम तरकीबी पर एतराज़ करते हुए तहरीर किया, क्या वो क़यामत तक दुरुस्त हो सकता है। पहला सवाल ये है कि मुस्लिम लीग इस खसूसियत को छोड़ देगी कि इसको सबसे पहले दौलत और जाह की तलाश है, इसको वो मोहरे मतलूब हैं जिन पर तलाई रंग हो, लेकिन पॉलिटिक्स की बसात में इन मोहरों की क्या कदर है। क्या एक मुअज्जज रईस, एक बड़ा ज़िम्मेदार, एक हकाम रस दौलतमंद किसी तहरीक के लिए अपनी जायदाद, अपनी हकाम रसी, अपनी फर्जी आबरू को नुकसान पहुंचाना गवारा कर सकता है। आजकल किसी शख्स की प्राइवेट हालत पूछना खिलाफ़ तहजीब है, लेकिन बाद ज़रूरत मुस्लिम लीग से अगर यह सवाल किया जाए कि माली हालत के लिहाज से आपकी हस्ती क्या है, तो जवाब मिलेगा कि एक ख़ास दस्ते करम इस बिना पर। मुस्लिम लीग के तमाम मनसूबे, तमाम तजावीज़, तमाम इरादे इसी दस्ते करम के इशारों पर हरकत करते हैं। मौलाना शिबली ने तजवीज़ किया कि मुस्लिम लीग अपनी रुकनियत सिर्फ अहले सरबत के ऐसे तबके तक महदूद ना रखे जिसका मुस्लिम अवाम से कोई राबता नहीं है। इसकी मजलस इंतजामिया से रईसों और जगीरदारों को निकाल दिया जाए और इनकी जगह ऐसे मुसलमान लाए जाएं जो आज़ादी से अपनी राय का इजहार कर सकें। लीग के आइन में मकासद की तस्वीर की जाए और मखसूस तहफात के हसूल की बजाय हिंदुस्तान के हक के खुद अरादियत के नस्बल आइन को शामिल किया जाए। सफ़ा नंबर 324। लेकिन लीग की शाखें देहातों में खोली जाएं ताकि मुस्लिम काश्तकारों में बढ़ती हुई गुर्बत और अफलास का मुदावा किया जा सके। लीग मुस्लिम अवाम में सियासी शऊर फैलाने की खातर लेक्चरों का अहतमाम करें और मुख्तलिफ हम असरी सियासी मसाइल पर पम्फलेट छुपा कर तकसीम किए जाएँ। लीग हिंदुस्तान में ऐसे हिंदू मुस्लिम इतिहाद को वजूद में लाने की कोशिश करे जो मुगलों के अहद हुकूमत में मौजूद था। वो इतदाल पसंदों की पॉलिसी अख्तियार करे और अपने शेड्यूल में सवाए इन चंद मखसूस करारदादों के जिनका तल्लक खालसतन मुसलमानों से है बाकी तमाम वो करारदादें अपना ले जो कांग्रेस ने मंजूर कर रखी हैं। जो मामलात हिंदुओं और मुसलमानों में मुश्तरक हैं इन पर बहस मुबासा मुश्तरक सियासी प्लेटफॉर्म पर किया जाए और इसी तरह जो वफद वासराय को भेजे जाएं इनके रुकन हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल हों। इन ख्यालात के हज़ार से तलीम याफ्ता मुसलमानों में हलचल मच गई यहाँ तक कि मुस्लिम लीग को भी अपनी असलाह की ज़रूरत महसूस हुई। लीग की इस वक्त की क़यादत के लिए मौलाना शिबली के तजावीज़ पर अमल करना तो मुमकिन ना था। अलबत्ता लीग के 1913 के इजलास में जो सर मोहम्मद शफी की सदारत में लखनऊ में मुनक़द हुआ आइन में थोड़ी सी तरमीम की गई और मकासद में हिंदुस्तान के लिए मुनासब हक के खुद अरादियत के हसूल के निस्बत आइन का इजाफा कर दिया गया मगर चूँकि ये तरमीम कतई गैर तसली बख्श थी इसलिए मौलाना शिबली ने लफज मुनासब पर अपने तंजिया अशार के जरिए इसका खूब मजाक उड़ाया। नौजवान मुस्लिम सियासी रहनुमाओं की निगाह में लीग की पुरानी क़्यादत की कोई वक़्त ना रही थी और वह रफ्ता रफ्ता लीग पर छाने लगे थे। हिंदू अखबारात तुर्की की महरूमियों पर हमदर्दी का इजहार करते थे और मुस्लिम कायदीन से लगातार अपील कर रहे थे कि हिंदुओं से मुफाहमत करें। इसी तरह नौजवान मुस्लिम सियासी कायदीन में मुतअद्दा हिंदी कौमियत की हमायत में रुझान बढ़ने लगा और लीग और कांग्रेस के इजलास साथ साथ होने लगे। इस नए सियासी रुझान की हमायत में इकबाल कि किसी तहरीर का सुराग नहीं मिलता जिससे जाहिर होता है कि वो इस रुझान से मुतासर ना हुए बल्कि इस्लाम के तसव्वुर मिली या मुस्लिम कौमियत के असूल पर कायम रहे। वजह यह है कि इकबाल के नज़दीक मुसलमान आलम को इसलिए हर मकाम पर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था कि इस्लाम के तसव्वुर मिली पर इनका अतकाद ना रहा था और वह अपनी अपनी कौमियतों के तहफ्फुज़ की खातर अलाकाई वतनीयत के मगरबी तसव्वुर में निजात की राह ढूंढ रहे थे। इकबाल के अकीदे के मुताबिक कौमियत इस्लाम मकाम की पाबंद ना थी लिहाजा इस दौर की शायरी में वह मगरबी तसव्वुर वतनीयत की मुखालफत में सरगर्म अमल रहे और मुस्लिम कौमियत के असूल की तशहीर पर इन्होंने खास जोर दिया। 1913 में ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम अपने एक खत में तहरीर करते हैं मुसलमान हिंदुस्तान की बेदारी के पांच असबाब जो आपने इस हफ्ते के तौहीद में अरकाम फरमाए हैं बिल्कुल बजा हैं लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि इकबाल जिसने इस्लामी कौमियत की हकीकत का राज इस वक्त मनकशफ किया जब हिंदुस्तान वाले इससे गाफल थे और जिनके अशार की तारीख जिमीदार कामरेड बलकान त्राबलस और नवाब वकारुल मुल्क की हक गोई के तरीक से पहले की है किसका खोशा चीन है। शायरों की बदनसीबी है कि इनका कलाम काम बरा भुला जो कुछ भी हो गैर महसूस होता है और जाहिर में आंखें मरियत की तरफ कदरतन ज़्यादा मुतवज्जह होती हैं। इस खत का मकसद शिकायत नहीं और ना ये कि इकबाल के काम का इश्तिहार हो। हसन निज़ामी को खूब मालूम है कि इसका दोस्त इश्तिहार पसंद मिजाज लेकर दुनिया में नहीं आया मगर ये मकसद इस खत का ज़रूर है कि एक वाकफ हाल दोस्त की गलत फहमी दूर हो ताकि इकबाल की वक़्त अपने दोस्त की निगाह में महज इस ख्याल से कम ना हो कि इसने मुसलमान हिंद की बेदारी में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन इन सब बातों के बावजूद इस ज़माने में जहाँ तक इनकी निजी ज़िंदगी का तल्लक है इन पर यासियत का आलम तारी रहा। वो बज़ाहिर अपने हबाब में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते और अपने बातनी अज़तराब का इजहार किसी पर भी ना करते। इस परेशानी की तरफ इशारा इनके एक खत में मौजूद है जो 16 अक्टूबर 1911 को अकबर आला आबादी का नाम लिखा गया। फरमाते हैं लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है लेकिन मैं इस हजूम में तनहा हूँ। एक फर्द वाहिद भी ऐसा नहीं जिससे दिल खोल के अपने जज्बात का इजहार किया जा सके। तना जन है जबत और लज्जत बड़ी अफशा में है कोई मुश्किल से मुश्किल राजदां के वास्ते। लॉर्ड बेकन कहते हैं कि जितना बड़ा शहर हो इतनी ही बड़ी तनहाई होती है। सो यही हाल मेरा लाहौर में है। इसके अलावा गुज़िश्ता चंद माह में बाज़ मामलात की वजह से सख्त परेशानी रही और मुझे बाज़ काम अपनी फितरत और तबीयत के ख़िलाफ़ करने पड़े। इकबाल यूरोप से वापस आ जाने के बावजूद नफसियाती तौर पर अभी तक एक लिहाज से यूरोप ही में थे। जब इन्हीं अमली ज़िंदगी के तल्ख हकायक का सामना करना पड़ता तो सख्त घबरा जाते। इस असासे मरूमी का सबब मुख्तलिफ अनासर थे, जिनमें से एक तो इनकी माली मुश्किलात थी और दूसरा इनकी अजवाजी ज़िंदगी की बेसकूनी। वो ज़हनी कर्व व इज़तराब के एक कठिन दौर से गुजर रहे थे। अलबत्ता इस कैफियत में क़याम यूरोप का हसीनो जमील तसव्वुर इन्हीं एक गोना तस्कीन बख्शता था। जर्मनी में इनकी खतो कताबत फ्रोलीन एम्मा वैगे नस्त से जारी थी, जिसे वो एक अच्छी और सच्ची लड़की समझकर पसंद करते थे। सफ़ा नंबर 327। चुनाचा यूरोप से वापस आकर इन्हीं पहला खत सियालकोट से 3 सितंबर 1908 को लिखा। फरमाते हैं, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मैं इंग्लिस्तान से रुखसत होने से बेशतर आपसे मिल ना सका। बराए करम मुझे जल्द लिखिए कि आप इन दिनों क्या कर रही हैं। मैंने अपने पेशे का आगाज़ लाहौर में करने का फैसला किया है। वो एक वकील के लिए अच्छी जगह है। मैं अपनी सारी जर्मन भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक लफ्ज़ याद है, एमा। 11 जनवरी 1909 को तहरीर करते हैं। मैं अब लाहौर में हूँ और यहाँ एडवोकेट के तौर पर काम कर रहा हूँ। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं कभी भी आपके खूबसूरत वतन को भूल सकूँ, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, और शायद अब हम दोबारा जर्मनी या हिंदुस्तान में एक दूसरे को मिल सकें। कुछ अरसे बाद जब मेरे पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं यूरोप मैं अपना घर बनाऊंगा। ये मेरा तसव्वुर है और मेरी तमन्ना है कि ये सब पूरा हो। बराए करम अपने इस दोस्त को मत भूलिए जो आपको हमेशा अपने दिल में रखता है और जो आपको कभी फरामोश नहीं कर सकता। हाइडलबर्ग में मेरा क्याम मुझे एक खूबसूरत ख्वाब सा लगता है और मैं इस ख्वाब को दोहराना चाहता हूँ, लेकिन क्या ये मुमकिन हो सकता है? आप बेहतर जानती हैं। 20 जुलाई 1909 को तहरीर किया। मैं बड़ी बेताबी से इस वक्त का मंतजर हूँ जब मैं दोबारा आपके वतन में आपसे मिल सकूंगा। मुझे जर्मनी बहुत पसंद है, इसने मेरे ख्यालात पर बहुत गहरा असर किया है और मैं जर्मनी में अपना क़याम कभी फरामोश ना करूंगा। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ और ख़ुद को बड़ा गमगीन पाता हूँ। हमारी तकदीर हमारे अपने हाथों में नहीं, बल्कि कोई अजीम कुव्वत हमारी जिंदगियों को मुनज़्ज़म करती है। आह, वो दिन जब मैं जर्मनी में था। बराए करम मुझे अपना दिल और यादों में एक छोटी सी जगह दीजिएगा। 22 सितंबर 1910 को एक तोहफा अरसाल करते हुए इन्हें तहरीर किया। ये पोस्तीन एक तिब्बती भेड़ की है। दरअसल इसे ओवरकोट के कॉलर और बाजुओं पर लगाया जा सकता है। 11 मई 1911 को लिखा। मेरी बड़ी तमन्ना है कि जर्मनी का दोबारा सफ़र करूं ताकि आपसे मिल सकूं। मैं नहीं जानता कि ये किस दिन मुमकिन हो सकेगा। वो खूबसूरत टाइयाँ मुझे मिल गई थी, लेकिन मैं बेहद शर्मिंदा हूँ कि अपनी मसरूफियत के सबब जल्द शुक्रिया अदा न कर सका। 30 जुलाई 1913 को एम्मा वैगे नस्त के वालद की वफ़ात के मौके पर तजियत करते हुए इन्होंने तहरीर किया। आपको याद होगा कि गोटे ने अपनी मौत के लम्हे पर कहा था कि मजीद रोशनी, गोया मौत मजीद रोशनी की तरफ एक नई राह वाह करती है और हमें इन मकामात तक ले जाती है जहां हम अब्दी हुसन व सदाकत के रूबरू खड़े हो जाते हैं। मुझे वो वक़्त खूब याद है जब मैंने गोटे की शायरी आपके साथ पढ़ी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी वो अयाम खुश याद होंगे जब हम रूहानी तौर पर एक दूसरे के बेहद करीब थे। और मैं तो महसूस करता हूँ कि हम अब भी एक दूसरे के बहुत करीब हैं, क्योंकि मैं रूहानी एतबार से आपका शरीक गम हूँ। काश मैं जर्मनी में होता और इस मौके पर अपनी हमदर्दी ज़ाती तौर पर आप तक पहुँचा सकता। पहली जंग अजीम शुरू होने से बेशतर अपने खत मोरखा 7 जून 1914 में भी यही बात दोहराते हैं कि वो दियार कदीम जर्मनी का सफ़र करने की ज़बरदस्त ख्वाहिश रखते हैं, ताकि इन्हीं अपने साथ लेकर गोटे के मज़ार की ज़्यारत को जाएं। पहली जंग अजीम के दौरान खतो खताबत बंद हो गई। अलबत्ता जंग के खात्मे पर 4 साल की तवील खामोशी के बाद इनकी और इनके ख़ानदान की खैर अफियत के बारे में खत लिखकर पूछा। इसी तरह 1909 से लेकर 1911 तक अतिया फैजी के नाम तहरीर करदा खतूत इनके जज्बात की अक्कासी करते हैं। इनकी निगाह में अतिया फैजी भी इनके क़याम यूरोप की यादों का हिस्सा थी और इनकी हमदर्दाना तवज्जो के पेश नज़र इनके सामने महरूमियों का इजहार मुमकिन था। इकबाल को अपनी बेचैनियों से निजात हासिल करने के लिए वक्ती तौर पर एक जज्बाती सहारे की ज़रूरत थी। इन नहायत ही हसास बाज़ौक और साहिब इलम ख़वातीन से कलमी तल्लक ने इन्हें यह सहारा मुहैया कर दिया। इस दौर के इकबाल की ज़हनी कैफियत को पूरी तरह समझने के लिए अतिया फ़ियाज़ी को लिखते हुए इनके खतूत के दर्ज ज़ैल इकतसाबात को निगाह में रखना ज़रूरी है। फरमाते हैं, कल रात मैंने आसमान पर पहुंचा और दोज़ख के दरवाज़ों में से गुजरने का इत्तेफाक हुआ। मैंने महसूस किया कि वो खौफनाक तौर पर सर्द हैं। मुझे मतजब देख कर उन्होंने बताया कि ये जगह अपनी फितरत के अतबार से सर्द है, लेकिन तपश से सख्त गर्म हो जाती है, क्योंकि दुनिया से हर कोई अपनी आग अपने साथ लेकर आता है। सो मैं जितने अंगारे मुमकिन हो सके जमा करने में मसरूफ़ हूँ, क्योंकि इस मुल्क में कोयले की खानें कम हैं। आजकल मैं दूसरों से बहुत ही कम बातचीत करता हूँ। मेरा बदबख्त नफ्स खुद ही शामत ज़दा ख्यालात का मादन बना हुआ है, जो मेरी रूह के तरीख व तार गोशों से सांपों की तरह निकलते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं अनकरीब एक स्पेरा बनकर गलियों में आवारा फिरूंगा, और मेरे पीछे पीछे मुतजस्स लड़कों का टोला होगा। ये ख्याल मत करो कि मैं यास पसंद हूँ, सच ये है कि गम बजाय खुद एक लज्जत है। सफ़ा नंबर 330। मैं तो अपनी महरूमियत से लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ और इन लोगों पर हंसता हूँ जो अपने तई समझते हैं कि वो खुश हैं। देखा मैं अपनी मसरत कैसे चुरा लेता हूँ, मुझे याद नहीं कि मैं इससे बेशतर क्या लिख चुका हूँ। इसलिए अगर मैं आप मेरे खत को बेरतब पाएँ तो इस सिलानी को माफ़ी कर दीजिएगा। एक और ख़त में तहरीर करते हैं, बाज़ औक़ात मैं कोई काम करने का इरादा रखता हूँ और फिर अपने आप को ख्यालात पर छोड़ देता हूँ ताकि वो मुझे जिस तरफ चाहें ले जाएं। बेशक हर इंसान अपनी आखिरी आरामगाह तक पहुंचने का सबराना इंतज़ार करता है। मैं भी जल्द से जल्द इस मुकाम को जानना चाहता हूं ताकि अपने खालक से ये मुतालबा करूं कि वो मेरे जहन की अकली तवज्जो करे। और यकीन कीजिए कि ये काम इसके लिए भी आसान ना होगा। आप मुझे समझ ना सकने की शिकायत मत कीजिए, खुद में भी अपने आप को नहीं समझता। मुद्दत हुई मैंने लिखा, इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्कर नहीं, वल्ला नहीं है। मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ कि आपको इस बात का रंज है कि शुमाली हिंदुस्तान के लोग मेरा कुमा हक्का एहतराम और तारीफ़ नहीं करते, लेकिन आप इसकी परवाह ना कीजिए। मैं दूसरों की बातों पर ज़िंदगी बसर नहीं करना चाहता। जीना वो क्या जो हो नफ्स गैर पर मुदार, शोहरत की ज़िंदगी का भरोसा भी छोड़ दे। मैं एक सीधी सादी दयानतदाराना ज़िंदगी बसर करता हूँ। मेरे दिल और ज़ुबान के दरमियान पूरी मुवाफ़क़त है। लोग मुनाफ़क़त की मदह सुना करते हैं, अगर शोहरत और इज़्ज़त और सताइश हासिल करने के लिए मुझे मुनाफ़क़त अख्तियार करना पड़ी तो मैं गुमनामी और कस मपरी की हालत में मरना ज़्यादा पसंद करूँगा। आवाम को जिनकी गर्दन पर रावण की तरह कई सार हैं, इन लोगों का एहतराम करने दो जो मजहब और अखलाक के मुतलक आवाम के झूठे और बेबुनियाद नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। मैं इनके रस्म और रवायात के आगे सर झुकाने और ज़हन इंसानी की आज़ादी को दबाने से बिल्कुल कासर हूँ। बायरन, गोटे और शीले के मुहासरीन इनकी इज्जत नहीं करते। मैं अगरचे इनके मुकाबले में कुव्वत शेरी के अतबार से कमतर हूँ, फिर भी मुझे फ़ख्र है कि कम अज़ कम इस मामले में तो मैं इनका हम सफ़र ज़रूर हूँ। दुनिया मेरी परतश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं अपने आप को परतश्त के काबिल समझता हूँ, क्योंकि मैं तो फितरतन खुद पुजारी हूँ। लेकिन अगर मेरी रूह की गहराइयों में छुपे हुए ख्याल लोगों पर जाहिर हो जाएं, अगर वो बातें जो मेरे दिल में पोशीदा हैं सामने आ जाएं, तो मुझे यकीन है कि दुनिया मेरी मौत के बाद एक न एक दिन ज़रूर मेरी परतश करेगी। लोग मेरी कोताहियों को भूल जाएंगे और आंसुओं की सूरत में मुझे खराज अकीदत पेश करेंगे।